ओम शांति। जिस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार करते थे, वो दिन, वो शुभ घड़ी, वो सुवर्ण अवसर आज आ गया है। ठीक है ना? जब से पता चला मधुबन पांडव भवन जाना है, तब से दिल के अंदर यही धुन, यही रट, यही लगन कि बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदानी भूमि में जाने का हमको गोल्डन चांस, लॉटरी मिली है। तो आज उस शुभ घड़ी पर आप सभी का बाप दादा के घर में, बाप दादा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से, शशि दीदी, शिलू दीदी सब की तरफ से, आप सर्व गामदेवी निवासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सभी के बीच में 5 दिन इस भट्टी में हमें क्या करना है, किस लक्ष्य से, कितने ऊंचे ध्येय से इन शुभ घड़ियों को सफल करना है, उसकी विधि सुनाने के लिए पधारे हैं आदरणीय शिलू दीदी जी। हम सभी शिलू दीदी जी का एक हाथ की ताली से फिर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप वो वरदानी मूरत आत्मा है कि जो हर भट्टी के अंदर सभी को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक करते रहते हैं। दीदी जी की वाणी में ही इतनी सरलता और प्रभाव है कि जो दिल को स्पर्श होता है कि हाँ, सचमुच हम 5 दिन इसी शुभ स्थिति के अंदर बिताएंगे। तो अभी हम बहुत प्यार से और ध्यान से सुनेंगे भट्टी का लक्ष्य एवं उद्देश्य आदरणीय शिलू दीदी जी। जो भी भाई बहने कृपया नीचे बैठ सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग भाई बहने आएंगे, उन सभी को भी सीट चाहिए ना। और बहनों की जगह इस तरफ है, यहाँ भी सोफे खाली हैं बहनों, वो आप साइड जिस तरफ बैठे वो भाइयों के स्थान है। तो जो भी माताएं बहने भाइयों की तरफ बैठे कृपया इस तरफ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो स्विच ऑफ कर दे या तो वाइब्रेट पर रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में ब्रह्मा बाप दादियों के चरित्र भूमि में हमारे तरफ से भी विशेष विशेष आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हाँ, भले एक हाथ की ताली रहे तो अच्छा है। आपने नीचे कल बहुत सुंदर डांस ड्रामा देखा, कईयों ने इस ग्रुप से भी होंगे जिन्होंने उसमें भाग भी लिया या नहीं, कि वो दूसरे थे, वो दूसरे थे या आप लोग भी थे उनमें से जो कल के जो प्रोग्राम में थे और अभी यहाँ हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा, भाग लिया स्टेज पर। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा, बहुत उमंग उत्साह से आपने यह कार्यक्रम किया। अब जितना ही उमंग उत्साह से वो सब किया, उतना ही उमंग उत्साह से यह मौन तपस्या भट्टी करनी है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है ना कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, जब काम करने का समय है तो उसको जी जान लगा कर काम करो, और जब खेलने का समय है तो जी जान लगा के खेलो। तो इसीलिए आपने कल तक तो खूब खेला, ऐसे ही कहेंगे ना, खेला कि नहीं, बहुत रास रचाया। तो जितना ही चाहे कहो कि बाह्य मुक्ता में आए, उमंग उत्साह में आए, अब उतना ही अंदर जाना है, उतना ही हंस बन करके मोती चुकना है, उतना ही सागर की गहराई में जाना है, उतना ही जितना आवाज में आए उसके विपरीत उतना ही साइलेंस में जाना है। साइलेंस में जाना सहज है या आवाज में आना सहज है, या दोनों ही सहज है? क्या कहेंगे, आवाज में आना ज्यादा सहज है या साइलेंस में जाना ज्यादा सहज है? दोनों सहज होंगे, लेकिन ज्यादा सहज क्या है? आवाज में आना अवश्य। और होना क्या चाहिए ज्यादा सहज? क्या होना चाहिए? साइलेंस में जाना, क्योंकि साइलेंस में जाने के लिए कुछ सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। तो जहां सोचने की जरूरत ही नहीं हो तो सहज है ना, कि चाहते हैं कि नहीं सोचे और सोच चलता ही रहता है। आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव तो साइलेंस है, अपना धाम भी शांति धाम है। जिस घर के हम परमानेंट रेजिडेंट हैं, ये साकारी दुनिया, ये आवाज की दुनिया, ये तो टेम्पररी एड्रेस है ना। तो परमानेंट एड्रेस, परमानेंट जो आत्मा का होम स्वीट होम है, उसको याद करना सहज है, या इस दुनिया का जो वो लौकिक होम है, घर है, उसको याद करना सहज है? क्या कहेंगे? अभी तो यही कहेंगे ना, वो ये लौकिक घर सहज है याद करना, क्योंकि उस घर को हम भूल गए थे, जो आत्मा का मूल वतन है उसको भूल गए थे। 84 जन्म इस साकार दुनिया में रहे तो घर से बहुत दूर आ गए थे। अब उस घर की याद फिर दिलाने लिए बाबा आए हैं। तो यह मौन तपस्या बट्टी उसकी याद ताजा करने लिए है। जन्म जन्मांतर हमने देह का ये चोला लिया, कर्म में आए, पहले तो कर्म संबंध थे, सुखदाई थे, फिर वो कर्म बंधन बन गए, दुखदाई बन गए। अब फिर से अगर कर्म संबंध में जाना है तो कर्मातीत बनना होगा, संपन्न बनना होगा, संपूर्ण बनना होगा, बाप दादा के बहुत समीप जाना होगा। आज भी बाबा की मुरली सुन रहे थे कि समान वही बन सकते हैं जो समीप जाएंगे, और जो समीप जाएंगे वो फिर केवल इस संगम पर ही समीप नहीं है, लेकिन सारा कल्प समीप रहेंगे, चढ़ने में भी समीप तो गिरने में भी समीप है ना, पूज्य रूप में भी समीप तो पुजारी रूप में भी समीप है। तो कितना सुंदर वंडरफुल पार्ट हम बच्चों का है। उसका नशा तो हर वक्त चढ़ा ही रहना चाहिए, पर जितना ही अंदर का वो नशा हो उतना ही उतनी ही साइलेंस में जाए। तो यह मौन तपस्या भट्ठी करने के लिए, आप भट्ठी में पकने के लिए आप आए हो, तो नाम ही है मौन तपस्या भट्ठी। यही मिला है ना बैज, क्या मिला है बैज पर, क्या लिखा है, मौन तपस्या भट्ठी। मौन शब्द की बहुत गहराई है, केवल मुख का मौन भी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कई लोग हैं जो मौन रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु मुख के मौन से भी ऊंचा मौन है कौन सा, मन का मौन। और मन का मौन कौन रख सकता है, जो मन मना भव होगा, जिसके मन में एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं होगा, जिसके सर्व संबंध केवल एक के साथ होंगे, जो उतना ही आत्म अभिमानी स्थिति में होगा, क्योंकि यही हमारा पहला पाठ भी है तो अंतिम पाठ भी है। शुरू शुरू में भी जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मातन में तो यही पाठ पढ़ाया, आत्मा का पाठ, और अंत में भी यही पाठ मुख्य होगा। एक सेकंड का जो पेपर होगा अंत का, इसी पाठ में हम कितने पक्के होंगे उस पर हमारी रिजल्ट होगी, जो अंत में और कोई याद न आए। और उसके लिए मम्मा बहुत सुंदर बात कहती थी कि अंत में कोई भी याद न आए सिवाय बाप के, उस परीक्षा में पास होने के लिए हर वक्त समझो मेरी ये अंतिम घड़ी है, मेरी अंतिम घड़ी है, तो कौन याद आएगा बाबा। दुनिया में तो जब कोई डिक्लेयर हुआ कि बस अभी ये थोड़े दिनों का मेहमान है, तो मन बुद्धि कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन टू लेट हो जाता है। लेकिन मन तो फंसा हुआ ही होता है, और अंत में उसी याद में मरते हैं, मरने से पहले रोते भी हैं कि जो मैं चाहता था वो तो कर नहीं सका, लेकिन अब पछतावत क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए पहले से ही तैयारी। बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय सावधानियां देते रहते हैं, हर मुरली में कोई न कोई तरीके से, किसी न किसी प्रकार से, कोई न कोई शब्दों से अंत की चेतावनियां देते रहते हैं। यहां तक बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा, पहले से पता नहीं होगा, अचानक भी होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, एवर रेडी रहना होगा, क्योंकि अचानक होगा, कभी भी बुलावा आए तो रेडी तो रहना है ना। उस समय थोड़ी पैकिंग करेंगे, कहीं जाना है और बुलावे का इंतजार करेंगे फिर पैकिंग करेंगे क्या, जाना तो है। तो अचानक होगा इसके लिए एवर रेडी है, खाली रेडी नहीं, एवर रेडी। हाँ थोड़ा थोड़ा रुको रुको, दो मिनट, हाँ ऐसे भी नहीं, बस बुलावा आया चल पड़े। और परंतु वो स्थिति जो एक सेकंड की हमें बनानी होगी, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में अगर हम सोचेंगे ये अभ्यास हम कर लेंगे, नहीं होगा। बताते ना बाबा, जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तो विकल्प परीक्षा राज किताब खोल के बैठो तो बुद्धि में बैठेगा कुछ। माँ बाप भी अपने बच्चों को कितना ताकीद करते रहते, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ मम्मी पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा, अभी तो एग्जाम्स बहुत दूर है पढ़ लूंगा। और जब सिर पर आ जाता है तो जैसे ही किताब खोल के बैठते हैं तो कांपना शुरू हो जाता है, इसको एग्जामिनेशन फीवर कहते हैं। कांपना शुरू हो जाते, बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्योंकि साल भर तो पढ़ाई की नहीं। अगर साल भर की पढ़ाई होती तो मौज से बिल्कुल निरसंकल्प होकर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं, वैसे तो पल पल पर हमारी परीक्षा है, जहां जीना है तहां तक सीखना है, पीना है पढ़ना है सीखना है, अनुभव करना है आगे बढ़ना है। ये कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, ये कोई भी नहीं दावा कर सकता है मैं सब कुछ सीख चुका हूं, क्योंकि बाबा भी यही कहते रहते बच्चे अंत तक पढ़ाई है। अभी कई बातें बाबा ने बताई नहीं है, टीचर साथ हैं और पढ़ाई चल रही है, इसलिए पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जब पढ़ाई पूरी होगी न टीचर होगा न स्टूडेंट्स होंगे, है ना, हम भी नहीं होंगे बाबा भी नहीं होगा, सब चलेंगे वतन में। जब तक टीचर है तब तक पढ़ाई है। कई ऐसे राज हैं जो अभी तक खुलने बाकी है और बाबा उसके लिए कहते वेट एंड सी। सारी बातें अभी बता दें तो अंत में वो मजा चला जाएगा, है ना। कोई फिल्म देखते हैं ना, तो अगर स्टोरी का पूरा पता नहीं होता है अंत में क्या होगा तो, और सस्पेंस बहुत होती है तो सोचते क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर जिसको कहानी का पता वो कहेगा नहीं बताएंगे आप, सस्पेंस रहने दो। सस्पेंस रखेंगे तो मजा आएगा, अगर पहले से ही पता चल गया तो पता है ये होगा ये होगा ये होगा तो मजा चला जाएगा। इसीलिए बाबा भी सस्पेंस रखते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं डेट कॉन्शियस मत बनो, विनाश कब होगा उसके लिए बाबा यही कहते हैं। कितनी बार बाबा से पूछते हैं बच्चे, बाबा से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा हंसी में उस बात को टाल देते हैं कि क्या बच्चे बाप को भेजना चाहते हो, कोई मेहमान आए और उससे पूछो आप कब जाओगे, कितना इतनी बड़ी इंसल्ट है। तो बाबा से अगर पूछते बाबा विनाश कब होगा, इसका मतलब बाबा को भेजना चाहते हो। या बाबा कई बार कहेंगे बच्चे डेट कॉन्शियस मत बनो, लेकिन क्या बनो, सोल कॉन्शियस बनो, क्योंकि डेट्स अगर बता दे फिर कहेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। इसीलिए शुरू से लेकर के जैसे यज्ञ की स्थापना हुई बाबा ने डेट बताई नहीं, इतना ही कहा, दादियां हमारी बताती है कि बाबा ने कहा बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, ये कह दिया, विनाश के साक्षात्कार हुए। अगली दिवाली नहीं आएगी बस बाबा ने कहा और विनाश का साक्षात्कार किया तो क्या हुआ, धक से सब भागे भागे सब, कुछ भी आगे पीछे नहीं देखा, भागे बाबा के पास। अगली दिवाली नहीं आएगी ये कहा। कई बार दादी प्रकाशमणि ये कहती थी हम लोगों को कि बाबा आपने तो कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, अभी तो कितनी दिवालियां बीत गई, अगर हमें ये पता होता तो कि 75 दिवालियां और भी बीतेगी तो पता नहीं हम आते भी या नहीं आते। ऐसे कहेंगे ना, 75 साल कौन जिएगा। लेकिन अगली दिवाली नहीं आएगी बाबा ने कहा, और इसीलिए तभी तो यज्ञ की स्थापना हुई, नहीं तो यज्ञ की स्थापना कैसे होती। और उस समय 14 साल तपस्या की, दुनिया का मुंह नहीं देखा। हम कभी कभी मनोहर दादी से पूछते थे कि दादी ये 14 साल आपने कैसे बिताए, क्या किया, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी का मुंह नहीं देखना, तो क्या किया 14 साल। तो पहले तो दादी ये कहती थी वो 14 साल तो लगे ही नहीं, वो 14 साल तो ऐसे लगा जैसे 14 महीने या 14 दिन यहाँ तक कह दिया, पता नहीं कैसे बीत गए 14 साल। क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराते रहे, फिर वो साक्षात्कार जो संदेशियां करती थी, फिर वो उसका ड्रामा बनाती थी, फिर उसमें मग्न होती थी, पढ़ती रहती थी, न्यारी रहती थी, एक क्लिफ्टन बीच पर जाकर एक्सरसाइज करती थी, बाबा की वाणियां सुनते थे। 14 साल ऐसे ही चुटकी में पूरे हो गए और दुनिया में तो हाहाकार मचा हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसी दौरान भारत में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अंग्रेज चले गए, खून की नदियां बही, ये सब उन्हीं 14 सालों में हुआ। और यहाँ बाबा के बच्चे कैसे थे, बाल भी बांका नहीं हुआ। तो बाबा ये भी कहते, जैसे मुरली में बाबा कहते लाखा भवन, ये पांडवों का भवन दिखाते हैं जो लाखा भवन कहलाता था, वो शीश महल की तरह था। तो जो बहुत ही सुंदर था तो कौरवों ने उसको आग लगाई, पर पांडव तो पहले से ही चले गए थे तो पांडव तो अंदर नहीं थे, परंतु सारा मकान जल गया पर बिल्ली के पुंगरे बच गए। पुंगरे दिखाते, बिल्ली ने पुंगरे बच्चे पैदा किए थे बिल्ली ने, तो वो सब बच गया और बाकी सब जल गया। ऐसे कहानी है महाभारत में। तो बाबा कहते हैं कि कैसे बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो वास्तव में ये तब होगा संभव जब हमारी इतनी तपस्या होगी। तो ये 4 दिन आप इतना ऊंचा लक्ष्य रखें कि हमें योग की भट्टी में तपना है। जैसे कोई अग्नि में चीज पड़ती है तो जिस रूप में अग्नि में पड़ती है उसी रूप में वापस नहीं निकलती, बदल कर निकलती है। कोयला डालो तो राख बन जाएगा, टमाटर बैंगन आलू कठोर होता है वो डालो तो नरम हो जाएगा, कोई नरम ईंट मिट्टी की ईंट डालो तो स्ट्रांग हो जाएगी, सोना डालो तो खाद निकल करके सच्चा सोना बन जाएगा, किचरा डालो तो वो कार्बन बन के ऊपर उड़ जाएगा स्मोक या धुएं के रूप में। तो वही चीज वापस उसी रूप में नहीं आती है। तो आत्मा भी उस अग्नि में तो नहीं जलेगी, परंतु इस योग की अग्नि में तपेगी और परिवर्तित होकर के निकलेगी, यही लक्ष्य रखना है। क्योंकि इसी लक्ष्य को अगर आप कायम रखेंगे तो अवश्य आप बहुत ही ध्यान से भट्टी करेंगे, नहीं तो इधर बैठे उधर बैठे, उनसे बातें की उनसे बातें की, टाइम पर क्लास में आए नहीं आए, सब बराबर। लेकिन ये चार दिन, ये आपको जो बैज मिला है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि बिल्कुल मौन में रहना है। अगर कोई आपसे बात करे भी ना, उसको कहो, ये नहीं कि बैज पड़ा हो और बातें करते रहते। हमारे पास एक विदेशी भाई था, बहुत मजाकी था, मजाक करता था, हंसी ह्यूमरस था, तो साइलेंस का बैज लगाते ना विदेशी, वो लगा करके घूमता रहता था और बातें करता रहता था। तो एक दिन मैंने कहा, देखो आपने साइलेंस का बैज लगाया है तो साइलेंस में रहो ना, नहीं तो बैज क्यों लगाया? मना ये इसलिए कि साइलेंस में रहना है। कहता है, बहन जी ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ ना, मैं ऐसे थोड़ी देखूंगा तब दिखाई देगा कि साइलेंस का बैज है, ये दूसरों के लिए। तो अगर मेरा बैज देख रहे तो मेरे से बात नहीं करे, मैं तो करूंगा। तो मैंने कहा मैं करूंगा और दूसरे नहीं करे, तो ये थोड़ी इसलिए साइलेंस का बैज है। तो ये मौन तपस्या भट्टी दूसरे पढ़ेंगे या आप खुद अपने लिए करेंगे? हा? चलो दूसरे आपसे बात करे, पर आपको ये ध्यान रखना है और बैज हर वक्त लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर आते रहते हैं लोग, विजिटर्स आते हैं, अपने बाबा के और भी सेंटरों के बच्चे आते हैं, सारा दिन यहाँ चहल पहल तो है ही, और उसमें आपका बैज अलग होगा तो आप न्यारे लगेंगे। अगर बैज नहीं होगा तो वो न्यारापन नहीं महसूस होगा, जैसे और सब वैसे आप होंगे, फिर आपसे बात करेंगे, पर बैज लगा हुआ होगा तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। और ये बैज लगाने का ये भी एक ठप्पा लग गया कि ये चार दिन मुझे तपना है। आप जैसे अंदर आए तो बाहर आपको तिलक लगाया, ये तिलक आत्मस्थिति का तिलक अथवा विजय तिलक, जिस तिलक को धारण करके अंदर में प्रेरणा ली कि मुझे इस भट्टी में सफलता पानी है। क्योंकि अभी समय है, फिर वापस मुंबई जाएंगे, वही कोलाहल, वही आवाज, वही कारोबार, वही गृहस्थी, और बाबा कहते हैं वो शक्ति अभी भरनी है। तो बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि इतने होंगे गामदेवी सेंटर के कनेक्शन के भाई बहने, पर उनमें से आप केवल थोड़े 200 से 200 जितने गिने चुने बाबा के रतन निकले हो, या आपको चुना गया है भट्टी करने के लिए। नहीं तो कितनों की इच्छा होगी आने की, नहीं आने की इच्छा होगी या नहीं थी? तो जिसको छुट्टी मिली बस वही आएंगे। तो आप लोगों को छुट्टी मिली और आप आए तो अपना भाग्य के भी गुण गायन करो, और साथ ही साथ इतना इस इन चार दिनों का पूरा पूरा लाभ रख लो, ताकि इस योग भट्टी से, मौन तपस्या भट्टी से आप ऐसे पक्के जाओ जो बिल्कुल बदल कर जाओ। लोग कहे कि अरे आप तो बदल के आ गए, पुराने संस्कार स्वभाव, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, ये मैं और मेरा, ये आगे बढ़ने नहीं देता है। इस मैं और मेरे को पूर्ण रूप से समाप्त करके जाओ। अगर मैं कहने की आदत है तो बाबा कहते मैं के साथ क्या जोड़ो, मैं आत्मा। अगर मेरा 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 कहने की आदत है, नहीं छूटती, तो भले कहो मेरा, लेकिन मेरा कौन? बाबा। तो मैं आत्मा। फिर कैसी आत्मा? अपने स्वमान को याद करते रहो, रोज आपको एक नया नया स्वमान मिलेगा। उस स्वमान को सारा दिन याद रखना और उसके आधार से आपके हमारे कई वरिष्ठ भाई बहने, खास जो शांतिवन में है, यहाँ वहाँ रहते हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, वो अपना समय निकाल कर आपके पास आएंगे क्लास कराने। तो उनका भी आप पूरा पूरा लाभ लेना, नोट करना, कि स्टूडेंट भी पक्का बनना। और फिर उसका समय मिले, मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना और स्वाध्याय करना और आगे बढ़ाना, तो यहाँ से आप बिल्कुल बदल कर जाएंगे। तो यही इस भट्टी का लक्ष्य भी है तो साथ साथ उद्देश्य भी है। अब हमारी शशि बहन आ गई जी। तो अभी आपके सामने शशि बहन आएंगी और वो भी अपने उद्गार व्यक्त करेंगी और आप सबको मधुबन की तरफ से टोली भी खिलाएंगे और आप अनुभव करेंगे कि बिल्कुल सबकी निगाहों से दूर है। चाहे चहल पहल तो है मधुबन में, मधुबन निवासी सेवाधारी चारों तरफ हैं, वो भले बातें करते हैं, लेकिन आपको वो देखे तो वो भी शांत हो जाए, इतने आपके वाइब्रेशंस उन तक भी पहुंचे। ये नहीं कि हाँ ये लोग मौन भट्टी में, हम तो नहीं है, वो ऐसे नहीं सोचे, पर आपके चेहरे पर वो तपस्या देखे, आपकी नैनों में वो योग अनुभव करे, बाबा की लगन में मग्न हो, वो आपके नैनों से वो देखे, तो वो चाहे कितनी भी आवाज में हो वो भी शांत हो जाए। आपकी तपस्या, आपके वाइब्रेशंस उनको अनुभव हो। और जब यहाँ आप ये कर सको तो फिर जहां भी आप जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, वापस मुंबई जाएंगे, तो इस अनुभव को कायम रखेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो फरिश्ता आ गया। आज भी बाबा ने का वरदान बहुत सुंदर था, अमृत वेले जैसे ही उठो तो क्या सोचकर उठो, हाँ मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता होकर उठो, बिल्कुल लाइट। तो बाबा आपको अपनी गोद में ले लेगा, लाइट होता है तो गोद में लेंगे ना। अगर भारी मन से अभी नींद बाकी है, झुटके खा रहे हैं, तो फरिश्ते थोड़ी है, डबल लाइट स्थिति हो। तो ऐसा ही अनुभव आप यहाँ से इन 3-4 दिनों की भट्टी में करके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
4 दिन भट्टी में मौन में रहना है, हर क्लास अच्छी तरह से अटेंड करना है, टाइम पर पहुंचना है, इस भूमि के पवित्र वायुमंडल का पूरा लाभ उठाना है। हम सभी के सामने बहुत ही ऊंचा लक्ष्य दीदी जी ने दिया है, हम सब दिल से धन्यवाद करते हैं और शशि दीदी का हम सब पूर्ण आदर भाव से स्वागत करते हैं। फिर से अपने एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन करेंगे। आप सभी शशि दीदी को पहचानते हैं, हम सभी की यह वह दीदी है कि जो पूरे ही पांडव भवन का दादी जी के साथ रह करके बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं। भट्टियां होती हैं, विदेश के भाई बहने आते हैं, सबको सुख की पालना देना वो आपका पार्ट है। आपकी बहुत बड़ी विशेषता वह वेल मैनेजमेंट है। बाप दादा के अवतरण के समय आप सभी देखते होंगे पूरे ही डायमंड होल को मैनेज करना छोटी बात नहीं है ना। इतनी अच्छी व्यवस्था आपके द्वारा वहां होती है और आपकी एक बहुत बड़ी निराली पहचान कि आप संदेशी हैं। हम सब दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति। बाप दादा के घर प्यारे प्यारे मधुबन तपस्वी वरदानी त्यागी भूमि में गामदेवी सेंटर से आए हुए सभी भाई बहनों के बाप दादा दादियाँ और दादी जानकी बिलसा दादी रतमन दादी मोहिनी बहन मुन्नी बहन और सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी है। स्वागत के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक भी हैं क्योंकि गामदेवी सेंटर की पालना करने वाले ऐसे बाप दादा महारथी मिले और गामदेवी सेंटर का कल गोल्डन जुबली का जो कार्यक्रम रहा वो इतना सुंदर था और यहाँ पर भी जो नीचे नहीं जा सके तो सभी टीवी के आगे बैठे थे। कल मधुबन में तो हमने कहा पूरी भट्टी तो कल हो गई, आप तो भट्टी करेंगे, आपको कहा साइलेंस में रहना है, बिल्कुल आवाज नहीं करना है। गामदेवी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में कल काफी सारे भाई बहने नीचे शांति बन गए थे और बाकी जो भाई बहने यहाँ थे क्योंकि कुछ को यहाँ रहना भी अति आवश्यक होता है तो जो यहाँ थे सब टीवी के आगे बैठे थे। तो कल जब मैं यहाँ चक्कर लगाया तो मैंने कहा आज कल बिल्कुल साइलेंस डे अनुभव हो रहा, शाम के टाइम बिल्कुल साइलेंस, कोई भी सामने नहीं है, कोई दो चार थे योग कर रहे थे, कोई टीवी के आगे बैठ करके सारा प्रोग्राम्स देख रहे थे। प्रोग्राम भी बहुत सुंदर था तो उसके लिए हम रमेश भाई नेहा बहन आशा बहन और गामदेवी सेंटर के भाई बहनों को पूरे ग्रुप को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत सुंदर था, 10:45 तक चला। जब अनाउंस हुआ कि ये प्रोग्राम है तो सब खाना खाने फटाफट खा करके आ गए और कुछ क्या किया खाने की प्लेट लेके बैठ गए और खाते रहे और देखते रहे। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी कमाल है। तो मैं ये देख रही थी कि आप सभी कितना न सौभाग्यशाली हैं। गामदेवी सेंटर के भाई बहने बॉम्बे में साकार बाबा ने ऐसी धरनी को वरदानों से सींचा, प्यारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी ने आप सबको और जो उस समय थे कई रतन उस समय के भी बैठे हैं लेकिन उस धरनी के अंदर ऐसे सफलता के बीज बोए जो आज सफलता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। एक केवल ज्ञान और योग की सफलता के साथ साथ बाबा जी से कहते ईश्वरीय मर्यादा और अपने आप से भी हम स्ट्रिक्ट रहें, डिसिप्लिन रहें, उसके लिए बाबा ने शीलिंद्रा दादी गवर्नर कहकर के ऐसा नियुक्त किया जो कि बिल्कुल एकदम गवर्नर की तरह लगती भी थी और वो सबकी ऐसे करती भी थी, नियम और मर्यादाओं में चलने के लिए प्रेरणा भी देती थी। और इसके बाद हमारी निम्मू बहन सागर की तरह। जैसे बाबा कहते हैं ना, आओ घर में सब बच्चों की खातरी करना, वहां जाएं तो निम्बू बहन ने क्या किया, आओ ये भी खाओ ये भी खाओ, खूब खातरी करती रही। तो मैं ये सोच रही थी, तो बाबा के घर में आने से पहले, तो आप इस भट्टी में आने से पहले साकार बाबा, मम्मा, दादियां, सर्वरिष्ठ दादियां और सब दादियां वहां पर जाती रही, और सब दादियों के साथ साथ रमेश भाई और उषा बहन की पालना के द्वारा आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त किए। तो यहाँ योग भट्टी में आना ही बाबा के साथ का अनुभव करना। कई भाई बहने बाद में आए, जब वो बाबा के साथ के अनुभव दादियों से या कुछ पुरानों से सुनते हैं, पुराने बैठे हैं जिन्होंने साकार बाबा को देखा, हाथ खड़ा करो। एक वो माता है, भाई भी है, हंसा माता नहीं आई है, वो भी बैठी होंगी हैं, जिन्होंने उसके बाद दादी की पालना ली, हाथ खड़ा करो। देखो, दादी दीदी की पालना लिए हुए हैं। तो जब दादियों के द्वारा बाबा के साथ के अनुभव सुनते हैं तो हर एक के मन में यही रहता है कि हमने साकार बाबा को क्यों नहीं देखा, बाबा बॉम्बे में आए और हम क्यों नहीं उनसे मिले। लेकिन हम आपको बताएं, आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि पांडव भवन वरदानी भूमि में भट्टी करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो है बाबा को अपने सामने, बाबा को साथी रूप में, बाबा हाथ पकड़ के चला रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा वरदानों से भरपूर कर रहा है। तो मधुबन की भट्टी, मधुबन में आना, बाबा ने एक बार कहा था, मधुबन में आना मीन्स वरदानों की खान में आना, खान में अखुट खजाना है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना ले सकते हैं, कितना हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस भट्टी के अंदर आप सब जो बैठी हैं, वो भट्टी में नहीं है, वरदानों की खान के पास पहुंच गए। और खान में जाने के लिए, सोने की खान होती है, गोल्ड माइंस होते हैं, कोल माइंस है, सिल्वर माइंस है, माइंस में जाने के लिए क्या करते हैं, बहुत गहराई में जाना पड़ता और ऊपर अपने बाहरी रूप को बदलना पड़ता है। जब वो माइंस में जाते हैं ना, तो उनको बाहर का ऐसा वो दे देते हैं, कोई पत्थर ना लगे, कोई चीज का अटैक ना हो, सब प्रकार का ऐसा पहनावा पहना देते हैं और अंदर एकदम नीचे भेज देते हैं, जैसे कि पाताल में चले गए। तो माइंस पर बैठे हैं, तो बाबा आज आपको क्या दे रहे हैं, फरिश्ते की ड्रेस। फरिश्ते यहाँ नहीं रहते हैं, फरिश्ते एकदम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं, वो ड्रेस पहन करके आपको रखनी होगी। फरिश्ते की ड्रेस को ना तो माया अटैक कर सकती है, ना माया उड़ा सकती है। तो जब आप फरिश्ते की ड्रेस पहन करके रहेंगे भट्टी के अंदर, तो कितने भी माइंस में चले जाओ, जितने खजाने लेने लो। और वो फरिश्ते का पता है कैसा होता है, फरिश्तों का दिखाते उनके साथ एक बैग होता है, और वो बैग के अंदर बहुत कुछ खजाने होते हैं। फरिश्ते जहाँ जाएंगे ना, अपने बैग से निकाला इसको दिया, बच्चे को दिखाते हैं कि फरिश्ता जा रहा है, बैग से निकाला ये दिया, किसको डॉल दिया, किसको टोली दिया, किसको वरदान दिया। तो जब फरिश्ते की ड्रेस आप डाल के रखेंगे तो आपके साथ एक बहुत सुंदर बैग भी होगा। वो बैग कौन सा होगा, बाबा ने बैग दिया है, खुशी का बैग है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब ये बैग अपने पास रखेंगे तो उस बैग के अंदर आप देखेंगे इतने वरदान होंगे, इतने वरदान होंगे। और जैसे आप अंदर जाएंगे उन खानों से वरदान जमा करते रहेंगे, और जमा करते हुए लगेगा इतने वरदान आ गए हैं तो क्यों ना मैं दूसरों को बांटूं। इसलिए बाबा कहते हैं महादानी वरदानी
विश्व कल्याणी, टाइटल तो बाबा ने दे दिए, लेकिन बाबा ने जो टाइटल्स बच्चों को दिए, साकार बाबा, मम्मा, दीदी, दादी, और हमारी कितनी वरिष्ठ दादियां, बॉम्बे की ब्रिजिंद्रा दादी और कोलाबा की पुष्प शांता दादी, उनकी एक एक की कहानी सुनते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है क्या नहीं खजाने उनके पास थे। ऐसे खजानों की स्थान से आप आए हैं, लेकिन उन खजानों को हमने अपने जीवन के अंदर प्रयोग में नहीं लाया। तो भट्ठी के अंदर जब हम कहते हैं हम योग भट्ठी में आए हैं, तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि योग भट्ठी के समय यहाँ पर कई भाई बहने बैठे होंगे, वो एक ही बात करते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता। अरे कमाल, बाबा के सामने बैठ के बाबा को कहते मेरा योग नहीं लगता है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार पहले साकार बाबा के, अव्यक्त बाबा के टाइम ग्रुप ग्रुप बाबा से मिलते थे, तो एक बार विदेशियों का मिलने का टर्न था, तो एक विदेशी भाई कहता था मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा, मेरा तो योग नहीं लगता है। तो उस समय बाबा के पास जब आते थे ना, एक एक आता था, तो बाबा के सामने जैसे आया ना, तो बाबा ने कहा एवर कॉन्स्टेंट योगी, तो सारे हंसने लगे। तो बाबा ने कहा क्यों ऐसा हंस रहे हैं, तो सब फिर हंसे। तो एक ने कहा बाबा ये कहता है बाबा मैं क्या करूं योग नहीं लगता। बाबा ने कहा और क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरा योग नहीं। तो क्या बोला, बाबा ही बोला ना, तो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन योगी ऐसा है वो रिवर्स योगी, कभी कभी गाड़ी उल्टी चलाते ना, कईयों को शौक होता रिवर्स ड्राइविंग करें, रिवर्स ड्राइविंग करेगा तो जाके कहाँ टक्कर मारेगा, वहां जाकर के ब्रिज को मार देगा, नया ब्रिज बना बॉम्बे में वहां जाके मार देगा, या फिर क्या करेगा किसी सागर के किनारे जाके पहुंच जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या करते हैं, बाबा उनको गोदी में लेके बैठा है, बाबा हाथ पकड़ के चला रहा है, बाबा ले जा रहा है, और फिर हाथ पकड़े बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा की गोदी में बैठे बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा ये नहीं लगता क्या, क्यों, कैसे, ये सब भट्ठी के अंदर क्या करेंगे, स्वाहा, आज से स्वाहा, किसी से प्रश्न नहीं पूछने जाने का इस भट्ठी के अंदर। आप योग कैसे लगाते हैं, आप योग का चार्ट कैसे लिखते हैं, सबसे एक एक चार्ट ले लेते हैं और चार्ट से अपना बैग भर लेते हैं, बैग भर के घूमते रहते क्या करूं क्या करूं है। तो बाबा ने ये कहा है कि बैग भरो वरदानों का और बाबा से मिलन मनाओ। कभी देखा हमारी दादियों ने कहा योग नहीं लगता है, दादी जानकी ने कहा कभी, बड़ी दादी ने कहा कभी, तो बड़ी दादियों का, बाबा का, मम्मा का, दीदी का जो हमने देखा, वो सदा बाबा के स्नेह में खोए हुए, इतना स्नेह में खोए हुए थे कि बाबा और दादियां एक लगते। आज दादियों को देखते हैं बाबा का साक्षात्कार होता है, बाबा के साथ का अनुभव होता है, क्योंकि वो बाबा के प्यार में खोई हुई है। तो ये भट्ठी भी हमको ऐसी मिली है कि हम बाबा के प्यार में खो जाएं, बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा के वरदानों की छत्र छाया में पल रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करेंगे। और इस ट्रैफिक कंट्रोल अभी बाबा की याद में बैठ जाएंगे, छत्र छाया में बाबा और मैं और कोई नहीं, ठीक है, बजा क्या नहीं, अच्छा बजा नहीं हम, तो बाबा की अभी ट्रैफिक कंट्रोल का बजा नहीं, क्योंकि दो प्रकार के बजते हैं यहाँ। तो बाबा हमेशा कहते हैं बाबा की छत्र छाया में बैठ करके हम ये अनुभव करेंगे। और दूसरा हम आपको बताएं कि बाबा ने ये कहा है कि मधुबन में आना, बाबा के अनुभव हम करेंगे कि बाबा कैसे हमको हाथ पकड़ के चला रहा, मुझे याद आता है साकार बाबा का, यही मई जून का महीना था और अभी तो जुलाई का महीना आ गया है। प्यारी प्यारी दीदी मनमोहिनी का महीना है। जून के महीने में हमने शांतामणि दादी के साथ का और प्यारी मामा के साथ का, और जुलाई का महीना बड़ी दीदी के साथ का है। तो साकार में बाबा यहाँ क्या करते थे कि अमृत वेले के बाद आंगन में खड़े हो जाते, एक तरफ मम्मा, एक तरफ दीदी दादी, सब महारथी भाई बहने होते थे, और बाबा क्या करते थे आंगन से चक्कर लगाते थे आगे। अभी बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आज आपको और भी खुशखबरी सुना देते हैं, क्योंकि जैसे कल गाम देवी सेंटर की तरफ से बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, तो आज ज्ञान सरोवर में बिजनेस सर्विस विंग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ग्रेसी सिंह और उनका ग्रुप आया है कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जो कि 8:30 शुरू होगा। 8:30 बोलते 8:45 भी बज जाएगा, तो इसलिए आपकी क्लास अभी यहाँ पूरा करेंगे, फिर आपसे मिलते रहेंगे। और क्योंकि आप सभी तो यहाँ ही रहेंगे, और यहाँ तृप्ति बहन आपको डायरेक्शन बाद में दे देना, मैं अभी टोली खिलाती हूँ। हाँ टोली अभी खिलाऊंगी, अभी आप सबको भट्टी के शुभारम्भ में मुख मीठा कराएंगे, टोली खिलाएंगे, फिर आपसे मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा रूहानी किया है, फिर आपसे मिलते रहेंगे और भी शेयर करते रहेंगे, क्योंकि वहां भी हमको जाना है, इसलिए अभी पूरा कर रहे हैं। और आप सभी आज शाम को बहुत देरी से भी आए हैं, सुबह से तो भागदौड़ कर रहे हैं, पिकनिक भी किया है, पिकनिक किया देर से पहुंचे, थके हुए भी होंगे, तो यहाँ शाम अभी रात को 8:30 बुला लो 8:45, थोड़ा डायरेक्शन देख करके फिर रात का कल्चर देख के आरंभ करेंगे। अच्छा अभी आप सभी का मुख मीठा कराएंगे और 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।